نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم اتما بارا ولو اننا نزلنا اليهم الملائكه وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ولو اننا اور اگرچہ ہم ان پر نازل کر دیتے فرشتوں کو اور کلام کرتے ان سے مردے اور ہم ان پر ہر چیز کو جمع کر دیتے اس کے باوجود بھی وہ ایمان نہ لاتے. کیا پتہ چلا کہ جن لوگوں کو نہیں ماننا ہوتا وہ نہیں مانتے. پچھلے پارے کے ساتھ اس کا ربط ہے کہ جب کسی کے دل میں ہدایت کی طلب نہیں ہوتی تو پھر اس کو ہر طرح کی نشانی بھی اگر مل جائے تو وہ اس نشانی کو دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائے گا. لہٰذا ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ چھوڑ دیجئے ان کے حال پہ. کیسے؟ اگر ہم فرشتے بھی ان پر نازل کر دیتے اور مردے ان سے باتیں کرتے اور دنیا بھر کی چیزوں کو ہم ان کی آنکھوں کے سامنے جمع کر دیتے تب بھی یہ ایمان لانے والے نہ تھے, الا یہ کہ اللہ کی مشیت یہی ہو کہ یہ ایمان لائیں. مگر اکثر لوگ نادانی کی باتیں کرتے ہیں. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کا پیغام دیا مکہ والوں کو تو وہ آپ کے دشمن بن گئے. کیوں بنے؟ کیونکہ اس پیغام کے بعد ان کی زندگی کا رخ بدلتا تھا. اس آیت پہ رکھ کے تھوڑا سا ایک امیجینیشن کرتے ہیں. مکہ کا شہر ہے, اللہ کے نبی وہاں نبی بنا کر کھڑے کر دیے گئے. اللہ کے نبی لوگوں کو کہتے, لوگوں میرے پر ایک کلام اترا ہے, اس کی ایک آیت تم بار بار پڑھو نہ, وظیفہ کرو تمہاری بیٹیوں کے رشتے ہو جائیں گے. پھر اللہ کے نبی اگلے دن کہتے, تمہیں پتہ ہے آج جو آیت اتری ہے میرے پر, اس کو گھول کے پی جاؤ شوگر کا علاج ہو جائے گا, اور یہ کر لو تو تمہارے سب مردوں کو جابس مل جائیں گی. کیا مکہ والے نبی کے دشمن ہوتے؟ نہیں ہوتے. وہ تو ہو سکتا ہے پانی کی بوتلیں لے کے آ جاتے کہ تھوڑا دم کرتے. لوگ اس طرح کا دین جب دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں اٹس اوکے, وہ تو مسلمان کیا کافر بھی مان لیں گے جس میں آپ کو فائدہ ہے. دشمنی کس بات پہ تھی کہ لا الہ الا اللہ؟ آج آپ بھی کسی جگہ بیٹھ جائیں نا, ذرا جا کے لوگوں کو وظیفے بتانے لگ جائیں, ٹوٹکے بتائیں, لوگ آپ کے پاس آ کر تعویذ لینے کو تیار ہوں گے. جس دن آپ ان آیتوں پہ عمل کی بات کریں گے اس دن ناراض ہوں گے. قرآن کا بنیادی نقطہ ہی انذار ہے, اس کو جب نکال دیتے ہیں تو پیچھے کچھ بھی نہیں رہتا. اب اگلی آیتوں میں ہم اس کی وجہ دیکھیں گے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا وَالشَّيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ, اور اسی طرح سے ہم نے اسی طرح ہمیشہ شیطان انسانوں اور شیطان جنوں کو ہر نبی کا دشمن بنا کر پیش کیا, جو ایک دوسرے پر خوش آئند باتیں دھوکے اور فریب کے طور پر القاء کرتے ہیں. اگر تمہارے رب کی مشیت یہ ہوتی کہ وہ ایسا نہ کریں تو وہ ایسا کبھی نہ کرتے, بس تم انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو کہ وہ اپنے جھوٹ باندھتے ہی رہیں. یہ سب کچھ ہم انہیں اسی لیے کرنے دے رہے ہیں کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل اس خوشنما دھوکے کی طرف مائل ہو جائیں اور وہ اس سے راضی ہو جائیں اور ان برائیوں کا اکتساب کریں جن کا اکتساب وہ کرنا چاہتے ہیں. یہاں اس آیت میں لفظ زخرف القول کو آپ ہائی لائٹ کر لیجئے, بہت ڈیٹیل طلب آئے تھے لیکن ہم اس کو ہلکا سا دیکھ لیتے ہیں. زخرف کہتے ہیں حقیر اور گھٹیا چیز کے اوپر اچھا رنگ چڑھا کر اس کو پیش کرنا, جس طرح آپ پلیٹنگ کرتے ہیں نا, گولڈ پلیٹڈ, فلاں پلیٹڈ, اسی طرح سے ونیر چڑھا دینا. یہ ہے وہ باتیں جو آج کے دور میں بھی اسلام کے خلاف لوگوں کو پیش کی جاتی ہیں. آج آپ دیکھیے کہ لوگوں نے باتوں کے جال میں لوگوں کو پھنسا دیا. جو بہت ہی زیادہ بدتمیز ہوگا اس کو کانفیڈنٹ کہیں گے, جو بہت زیادہ دین پہ عمل کرے گا اس کو ایکسٹریمسٹ کہیں گے, جو دین کے ساتھ دنیا کو بھی رکھتے ہوئے بہت ساری نافرمانیاں کرے گا اس کو پروگریسو کہیں گے. بچے ماں باپ سے بدتمیزی کرے کہتے ہیں نہیں کوئی بات نہیں, ان کے اندر کانفیڈنس ہے. آج کا وہ دور ہے, نقلی کو اصلی بنائے گا. اسی پہ بالکل ایک ریسرچ تھی, اور وہ کیا تھا کہ جو لوگوں نے ڈارونزم کو عام کیا تھا, لوگوں نے جب ان سے ثبوت مانگے تو انہوں نے کہا کہ انسان ایوالو ہوا ہے, پہلے بندر تھا, بندر سے ہوتے ہوتے انسان بنا. لوگوں نے ان سے کوئسچن کیا کہ اچھا پھر کوئی اس کی تصویر, کوئی بات ہوگی, کوئی انٹرفیس ہوگا نا کہ انسان میں تھوڑی سی بندر کی بھی خوبیاں ہو اور انسان کی. تو ایک سائنٹسٹ تھے جنہوں نے اس کا اقرار کیا اور لوگوں کو دکھا دی. اب لوگ کچھ بول نہیں سکتے کہ جبڑا جو تھا, جو تھا وہ بندر کا تھا, باقی جسم انسان کا تھا. کہا دیکھو یہ آ گیا نا دور. لیکن 40-50 سال گزرنے کے بعد ثابت ہو گیا کہ وہ جھوٹ تھا. انسان کے منہ میں بندر کا جبڑا لگا کر یہ دکھا دیا کہ انسان بندروں سے پیدا ہوا ہے. یہ ہے زخرف القولی غرورا. اور جب سے یہ تھیری عام ہوئی, آپ کہتے کہ ڈارون پریس تھا, خود کو مذہبی عالم کہتا تھا, लेकिन जब इसने डार्विनिज्म पेश किया उसके बाद ये एथियस्ट बन गया। किस तरह की मौत इसकी हुई। तो आज के दौर में जब इस्लाम पर बातें की जाए और कुफ्रिया चीजों को खूबसूरत करके दिखाया जाए, तो आप इस आयत को याद रख लें कि जब लोग असल पे नकल को पेश इतने फख्र से करते हैं, तो अगर मैं और आप असल पेश कर रहे हैं तो हमें कितना कॉन्फिडेंस चाहिए। एक एक लोहे पे गोल्ड का पानी चढ़ा दें, लुक लाइक गोल्ड, और एक असली गोल्ड, ज्यादा कॉन्फिडेंस किसके पास होगा? असल को सोना बेचने वाले पे। इस्लाम वालों के पास क्या है? मुसलमान के पास क्या है? रियल गोल्ड है। अगर आज मुझे और आपको इस बात का यकीन आ जाए ना, तो यकीन करें पूरी दुनिया को हम पूरे यकीन से इस्लाम के ये गोल्डन रूल सिखा सकें और लोग हमारे थैंकफुल भी हों। अफ़ग़ैरुल्लाही अब्तगी हकमन, फिर जब ये हाल है तो क्या मैं अल्लाह के सिवा कोई और फैसला करने वाला तलाश करूं? हालांकि इसने पूरी तफसील के साथ तुम्हारे इस तरफ किताब नाजिल कर दी, और जिन लोगों को तुमसे पहले किताब दी गई थी वो जानते हैं कि ये किताब तुम्हारे रब की तरफ से हक के साथ नाजिल हुई। बस तुम शक करने वालों में शामिल ना होना। तुम्हारे रब की बात सच्चाई और इंसाफ के एतबार से कामिल है। इसको हाईलाइट करें। अल्लाह ताला आपको मुझे खुद ही तसल्ली दे रहे हैं कि तुम्हारे पास जो दीन है ये बैलेंस दीन है, सिदकन व अदलन है। देखिए, इस्लाम बराबरी की बात नहीं करता बल्कि अदल की बात करता है। इंसाफ करने वाला नस्फ से है, इंसाफ का लफ्ज देखिए नस्फ, आधा आधा, जबकि इस्लाम बैलेंस सिखाता है। किस तरह से? आप देखिए कि औरत जितना काम कर सकती है, इस्लाम ने औरत को उतनी जिम्मेदारियां दे दी। मर्द की जितनी कैपेसिटी है, मर्दों को अल्लाह ताला ने उतना काम करना उसके ऊपर लगा दिया। अब एक बाप बेटा जा रहे हैं, एक बूढ़ा बाप है जिसकी हाथ में ताकत नहीं है और बेटा जो है वो बिल्कुल जवान है। दोनों के हाथ में 10-10 किलो के घी के डब्बे पकड़े हुए हैं। ये क्या है? निस्फ निस्फ, इंसाफ। जबकि अदल क्या है? कि बूढ़े बाप के हाथ में कुछ ना हो और जवान बेटा 10 और 10, 20 दोनों पकड़ ले। इस्लाम के असूल कुछ इस किस्म के कि लोगों को जो हुक्म देता है वो बजाहर देखने में ठीक ना भी लगे, लेकिन हकीकत में वो लोगों के हक के होते हैं। अल्लाह सुब्हान तआला यहाँ यही बात करके फरमाते हैं, कोई इसके फरामीन को बदल नहीं सकता और वो सब कुछ सुनता और जानता है। अब अगली आयत को हाईलाइट करना चाहें तो मोस्ट वेलकम। वइन तुती अक्सरा मन फिल अर्द युदिल्लुक अन सबीलिल्लाह, और ऐ नबी, अगर तुम इन लोगों की अक्सरियत के कहने पर चलो जो जमीन में बसते हैं, तो वो तुम्हें अल्लाह के रास्ते से भटका देंगे। वो तो महज गुमान पर चलते और क्या सराइयां करते हैं। दर हकीकत तुम्हारा रब ज्यादा जानता है कि कौन इसके रास्ते से हटा हुआ और कौन सीधी राह पर है। इसको देख लीजिए, आज क्या जुमला बोलते हैं? शायद आप में से किसी को ये आयत पढ़कर याद आ गया हो, मेजोरिटी इज अथॉरिटी। आज ही डेमोक्रेटिक सिस्टम में सीखा ना, अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, मेजोरिटी इज नॉट अथॉरिटी। अक्सर के पीछे लगोगे तो भटक जाओगे, क्योंकि अक्सरियत ख्वाहिशों के पीछे चलती है। क्या अगर अक्सरियत गे मैरिज को वोट दे दे तो वो जायज हो जाएगी? क्या अक्सर लोग कह दें कि औरत को मर्द और मर्द को औरत बना दो तो वो जायज हो जाएगा? तो लोगों को नहीं फॉलो करना, अकलियत हमेशा हक पे होती है। अक्सरियत के पीछे पड़ने वाले भटक जाते हैं। फिर अगर तुम अल्लाह की आयात पर ईमान रखते हो, तो जिस जानवर पर अल्लाह का नाम लिया गया हो इसका गोश्त खाओ। आखिर क्या वजह है कि तुम वो चीज ना खाओ जिस पर अल्लाह का नाम लिया गया हो? हालांकि जिन चीजों का इस्तेमाल हालत इस्तरार के सिवा दूसरी तमाम हालतों में अल्लाह ने हराम कर दिया है, इसकी तफसील वो तुम्हें बता चुके हैं। कहां? सूरत माईदा में। बकसरत लोगों का हाल यह है कि इल्म के बगैर महज ख्वाहिशात की बिना पर गुमराह कुन बातें करते हैं। इन हद से गुजरने वालों को तुम्हारा रब खूब जानता है। तुम खुले गुनाहों से भी बचो और छुपे गुनाहों से भी। आप देखिए कि आज एक और भी चीज सुनने को आई, और वो क्या कि बच्चे गोश्त नहीं खाते। क्यों? कहते हैं एनिमल राइट्स के खिलाफ है कि आप गोश्त काटें। हाय, जानवर को जिबा कर दिया, अल्लाह ने इनको किस लिए पैदा किया? आज आप देखिए वो लोग जो एनिमल राइट्स के नाम पे बड़ा बड़ा काम करते हैं, बाज वो इंसानों से दूर है। फ्रांस में एक खातून थी तो जो एनिमल राइट्स की नुमाइंदगी करती हैं, जब उनके अपने घर बच्चा पैदा हुआ तो उसने कहा कि मैं इसकी शक्ल नहीं देख सकती, इसको ले लो। कहती है आई फील आई मेरे अंदर एक मॉन्स्टर है, लिहाजा उसको पीछे करो। जितना इंसान जानवरों की बातें ज्यादा करेगा ना, उतना इंसानों से दूर होगा। और आज वही कल्चर है, अपने बच्चे बुरे लगते हैं और जानवरों के बच्चे पाले जा रहे हैं, क्योंकि आपके बच्चे तो आपके पास रहना पसंद नहीं करते। फिर आपको कोई तो जानदार हिलती जुलती चीज घर में चाहिए, तो फिर आप अपने घरों के अंदर एक से ज्यादा ऐसी चीजें लेके चलते हैं। और मेरे लिए ये पहला मुकाम था जब मुझे किसी ने बताया कि जिस तरह इंसानों के बच्चों की बेबी सिटिंग होती है, इस तरह कुत्तों के बच्चों की भी होती है। एक घर है और उसमें 14 कुत्ते हैं। क्यों? कि वो घर वाली जो है वो कुत्तों की बेबी सिटर है। अब आप सोचिए, जिस घर में 14 कम से कम है, ज्यादा भी हो सकते हैं, तो उस घर में रहने अली का आलकर वो नीम पागल हो चुकी होंगी। तो अल्लाह से दुआ कीजिए कि इंसान को इंसानियत की कदर आ जाए। फिर फरमाए वला ताकुलु मिम्मा लम युज़कर इस्मुल्लाहि अलैहि, और जिस जानवरों को अल्लाह का नाम लेकर ज़िबा ना किया गया हो इनका गोश्त ना खाओ, ऐसा करना फिस्क है। शैतीन अपने साथियों के दिलों में शकूक व एतराज़ात इल्का करते हैं ताकि वो तुमसे झगड़ा करें, लेकिन अगर तुमने इनकी इताअत कबूल की तो यकीनन तुम मुशरिक हो। प्यारी सी आयत, इसको हाईलाइट कीजिएगा। अब अमन का नमई तनफा यही ना हो, क्या भला वो शख्स जो पहले मुर्दा था फिर हमने इसको जिंदगी बख्शी, इसको वो रोशनी अता की जिसके उजाले में वो लोगों के दरमियान जिंदगी की राह तय करता है, इस शख्स की तरह हो सकता है जो तारीखियों में पड़ा हुआ और किसी तरह से उसके अंदर से निकलता ही ना हो। ये कौन सा जिंदा और कौन सा मुर्दा है, समझ गए? हदीस में मोमिन को जिंदा और काफिर को मुर्दा कहा गया। क्यों? क्योंकि मोमिन का ताल्लुक अल हय से होता है, अल कय्यूम से होता है, और काफिर कौन है? जो अल्लाह की नेमतों को देखते बूझते उसे आंख बंद कर लेता है। और यहाँ नूर यमशी भी ही फिन्नास से मुराद किताब का नूर है। हकीकत यह कि जब किताब की रोशनी जिंदगी में आती है तो इंसान इसी के साथ चलता है। और इस आयत से एक और बात भी समझ आती है कि इस किताब को पढ़कर आप सिर्फ मदरसे या मस्जिद में नहीं बैठेंगे बल्कि यमशी भी ही फिन्नास, लोगों के अंदर चले फिरे। आज मुसलमानों के जवाल की एक और अलामत है, और वो क्या है कि उन्होंने दीन और दुनिया दो मुख्तलिफ चीजों की टर्म्स ईजाद कर ली। मस्जिद में आएंगे नमाजी, उमरे पे जाएंगे उमरा करने ले हाजी, रोजे रखेंगे रोजों में रमजानी। लेकिन जब अमली जिंदगी के कोई मामले सामने आते हैं तो फिर क्या होता है, वो कहते नहीं अब लोगों की मर्जी के बनो। यहां इस आयत से पता चलता है कि जब तक हम इस कुरान और इस किताब और इस्लाम को मस्जिदों से मदरसों से बाहर निकालकर चलते फिरते बाजारों और मॉल्स और दूसरी जगहों पर नहीं लेकर जाएंगे तब तक आम लोग इसको नहीं पढ़ेंगे। कितने लोग हैं जो आपके मस्जिद में आकर कुरान पढ़ना चाहें जो नॉन मुस्लिम है? क्या आप जा सकते हैं किसी चर्च में बाइबल पढ़ने? तो वो क्यों आए? कौन सी किताब लोगों को पढ़ानी है? इस 5 से 6 फुट की किताब यमशी भी ही फिरना, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ लोगों के बीच में चलते फिरते कुरान बने। फिर देखिए कि अल्लाह ताला कितने लोगों की हिदायत का जरिया आपको और मुझे बना देता है। वकजालिक जालनाफी कुल्ली करियत नकाबिर मुजरिमीहा, काफिरों के लिए तो इसी तरह उनके अमाल खुशनुमा बना दिए गए, और इसी तरह हमने हर बस्ती में इसके बड़े बड़े मुजरिमों को लगा दिया कि वहां अपने मकरो फरेब का जाल फैलाएं। दरअसल वो अपने फरेब के जाल में आप फंसते हैं मगर इनको इसका शऊर नहीं है। ये भी बात नोट करने के काबिल है कि आम दर्जे के लोग जो होते हैं ना, चाहे वो मुस्लिम है या नॉन मुस्लिम, वो इस्लाम की इतनी मुखालफत नहीं करेंगे, अल्लाह के तरीकों को बुरा नहीं कहेंगे, क्योंकि उनके रास्ते में कोई रुकावट ही नहीं होती। वो बेचारे पहले ही फितरत के साथ चल रहे होते हैं, हैंड टू माउथ है, जिंदगी गुजार दी, किसी देहात में रहते हैं, खुली छत के नीचे सोते हैं। कुरान की दावत की सबसे बड़ी चोट इन लीड्स पे पड़ती है क्योंकि उनका लाइफ स्टाइल टकराता है फिर उस किताब से, तो फिर अखीर वो मुजरिम बन जाते हैं ऐसी बात कहने वालों के। वैसा चाह तुम आयतुन कालू, और जब इनके पास कोई आयत आती है तो वो कहते हैं हम ना मानेंगे। अल्लाह से दुआ कीजिए हमारे अंदर से ये आवाज ना उठे जब तक कि वो चीज खुद हमको ना दी जाए जो अल्लाह के रसूलों को दी गई। अल्लाह ज्यादा बेहतर जानता है कि अपनी पैगंबरी का काम किससे ले और किस तरह ले। करीब है वो वक्त जब ये मुजरिम अपनी मक्कारियों की पदाश में अल्लाह के यहाँ जिल्लत और सख्त अजाब से दो चार होंगे। कोई शख्स कितना भी अमीर हो जाए क्या वो उस मुल्क का कानून मानता? यानी अगर आम मेरे आप जैसे आम लोगों को रेड लाइट पर गाड़ी रोकनी पड़ती है तो क्या इस शहर के करोड़पति या मिलियनेरियंस को भी रोकनी पड़ती है? पड़ती है ना, तो बस यही अल्लाह के यहाँ रूल है। हाँ ये अलग बात है कि आम गाड़ी रुक जाएगी तो खुशी से आगे चल पड़ेगी, बड़ा बंदा जब अपनी गाड़ी को हर थोड़ी देर बाद रोकेगा रेड लाइट पे तो उसकी अना पे चोट तो पड़ेगी। वो क्या चाहता है, हमारे लिए रास्ते साफ हों। हट जाओ बच जाओ, सदर साहब की गाड़ी आ रही है, उनको प्रोटोकॉल चाहिए होता है। तो जो इस दुनिया में प्रोटोकॉल लेना चाहता है फिर उसको अल्लाह ताला की बातें ज्यादा अच्छी नहीं लगती। लिहाजा ऐसी बातों को सुन के क्या कहते हैं, हम तो नहीं मानेंगे। हमें डायरेक्ट प्रोटोकॉल दिया जाए कि क्या रसूल को दिया था, लाओ दिखाओ भाई क्या आया तुम्हारे रसूल के पास। नऊज़ुबिल्लाह, उनका दावा यह कि रसूल की तरह फरिश्ता हमारे पास आए। फरमाया अल्लाह ताला ज्यादा बेहतर जानता है कि अपनी पैगंबरी का काम किससे ले और किस तरह ले। करीब है जब वो मुजरिम अपनी मक्कारियों की पदाश में अल्लाह के जिल्लत और अजाब से दो चार होंगे।